राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 11 नवंबर 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
यह बताया है कि आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति गुरुजी। यहाँ आत्मा शब्द शरीर का वाचक है। आत्मा शब्द मन का बुद्धि का ईश्वर का परमात्मा का आत्मा का जीवात्मा का वस आता है। यहाँ आत्मा शब्द शरीर का वाचक है। आत्मोपमेन मानो आत्मा की उपमा शरीर की उपमा। इस उपमा को लेकर जो संदेहता है सब जगह सुख और दुख को वो योगी श्रेष्ठ योगी माना गया है। तो आत्मोपमेन क्यों कहा कि दूसरी किसी की उपमा दी जाए तो पता नहीं है, परंतु सुख का यदि दुख दोनों बातें बताई, दोनों बातों के लिए जैसे अपने शरीर में किसी अंग में भी वो पीड़ा नहीं चाहता, हरेक प्राणी मनुष्य का और भी, और किसी अंग में भी सुख चाहता है, आराम चाहता है, पीड़ा रहित सुख चाहता है, ऐसे आत्मोपमेन सर्वत्र सब में वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, देवता हो, दानव हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कोई ज्ञान हो, सुखम व यदुरा दुखम समम पश्यत। सुख और दुख को समान रीति से देखता है। जैसे शरीर में अंग हमारे अलग अलग हैं और उनका व्यवहार अलग अलग है, परंतु सब अंगों में सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। इसी तरह से संपूर्ण प्राणियों के साथ ऐसा बर्ताव करे, किसी को दुख न हो, सभी को सुख पहुंचे। सहयोगी परमो मतलब योगी श्रेष्ठ माना गया। रामायण में आता है भगवान श्री राम, जगत माता सीता जी और लक्ष्मण जी वन में गए। वहां वनवास में रहते हैं तो उसमें कहते हैं से लखन सी रघु भी रहे जिम अविवेकी पुरुष शरी रहे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि लखन लाल जी सीताराम जी की सेवा कैसा करते हैं, जैसे अविवेकी पुरुष शरी रहे। अविवेकी पुरुष जैसे शरीर की सेवा करता है। अविवेकी क्यों हुआ कि विवेकी होता है उसमें शरीर की बेपरवाह होती है, पर अविवेकी होता है वो तो शरीर की परवाह रखता है। तो यहाँ भी वही अर्थ लेना चाहिए, विवेकी का नहीं। आत्मोपमेन शरीर की उपमा ली तो सामान्य जैसे शरीरधारी है, पशु है, पक्षी है, कोई भी मात्र शरीरधारी है, वे शरीरधारी जैसे अपने शरीर को सुख चाहते दुख नहीं चाहते, ऐसे किसी का भी दुख नहीं चाहते और सबका सुख चाहते। ऐसे बर्ताव करे, केवल चाहना ही नहीं ऐसा ही बर्ताव करे। सहयोगी परमो मतों पर भी योगी है। तात्पर्य क्या निकला, शरीर में हमारे अलग अलग अवयव है, उन अवयवों से हम अलग अलग काम लेते हैं। हाथों का अलग काम है, पैरों का अलग काम है, मस्तक का अलग काम है और पीठ है, जितना शरीर है उनके अलग अलग काम है। ये विभाग रखते हुए सबको सुख पहुंचाना है, सब संघों को एक काम करना, ऐसा नहीं। आप क्षमा करना भाई, मेरे मन में आई है जैसे मैं बात कहता हूँ। जैसे आज कहते हैं कि सबके साथ खान पान एक करो, रोटी बेटी का बर्ताव समान रेस करो, ये समान नहीं है, ये समता नहीं है। ऐसी समता विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनिचे व स्वभा के पंडिता समदर्शी न, तो समता की गीता में नहीं है। आदि से अंत तक खूब विचार कर देखे तो गीता में समता की विशेष महिमा है। अभी इतना समय नहीं है, मैं सब गीता का उदाहरण नहीं देता हूँ, इतनी कहता हूँ समता की महिमा है। वो समता क्या है, सुख दुख की समता, किसी को दुख न पहुंचे, सबको सुख पहुंचे। ये जो सम कहते हैं तो पंडिता समदर्शी ने कहा है, ऐसा नहीं कहा पंडिता समवर्तिन, समान बर्ताव करे सबके साथ। आप अपने शरीर के अंगों के साथ भी सम बर्ताव नहीं करते, हाथ में भी दायां बायां हाथ कहते हैं हमारे भाई है, ये हमारे दायना हाथ है, ये बायां हाथ है हमारे, ऐसा कहते हैं। परंतु बर्ताव अलग अलग होता है। हम मुंह आदि धोते हैं तो इस हाथ से धोते हैं, नाभि से ऊपर अगर हाथ घुमाया जाए, स्नान किया जाए, इस हाथ से करते हैं, और नाभि के नीचे भाग में अगर हाथ धोते हैं, सही धोते हैं, तो इस हाथ में काम लेते हैं। भोजन आदि इस हाथ से करते हैं और मलमूत्र त्याग करके और साफ करते हैं तो इस हाथ से करते हैं। हाथ में क्रिया बरोबर है, सुख बरोबर है, परंतु व्यवहार में बरोबर नहीं होगा। बरोबर व्यवहार कर सकते नहीं, कहते नहीं कह दे, कर सकते नहीं। माँ है, बेटी है, बहन है, उनके बर्ताव सबका अलग अलग होगा। अलग अलग बर्ताव होते हुए भी किसी को ही कष्ट न पहुंचे, सबको ही सुख पहुंचे, ये समता है। भोजन कराना है तो सबको ठीक तरह से भोजन समता से कराना है, तो समता का मतलब पक्षपात न करें। ये नहीं कि चीनी दे दी तो चर्चा ना दे दे दो सबको ही, ये नहीं। भोजन दे दो तो एक समान दे दो, कैसे दे दे एक समान, किसी की खुराक ज्यादा है, किसी की खुराक कम है, तो सम का अर्थ है जिससे पेट भर जाए, तृप्ति हो जाए, इस तरह से करना वो समता है। औषधालय में जैसे हम जाते हैं तो समता कह दिया जाएगा आज इस शीशी की दवाई देंगे, दस्तें लगती हो तो ये देना है, और जब कोष बंद हो जाए मन दस्तें न लगे तो ये देना, ऐसा नहीं होगा, समता नहीं होगी। समता यथा योग्य, जैसा रोग है उस रोग के अनुसार से उसको गुटिका दी जाए, काढ़ा दिया जाए, हिम है, फाट है, चूर्ण है, अलग अलग है, रसादिक चीज है, और चीजें समता से मन उसकी बीमारी दूर हो, उसको आराम पहुंचे, सबके हित की दृष्टि से करना है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, रामायण कह रही है। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही, तो वही बात हुई समता का योगी हुआ वो, सबके हित की बात। गीता में सर्वभूत हिते रता दो बार आया, पांचवें अध्याय में, बारहवें अध्याय में। पांचवें अध्याय में लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम विषय क्षीण कल्पषा छिन्नद्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता, तो वहाँ ज्ञान का प्रकरण है, तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति बताई। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम विषय क्षीण कल्पषा, जिनके पाप दूर हो गए ऐसे ऋषि है, तो वे लबंधे ब्रह्म निर्वाण छिन्नद्वैधा यथात्मा, जिसमें दुविधा नहीं है, ऐसे छिन्नद्वैधा यथात्मा मन इंद्रिया वश में, वे सर्वभूत हित रहता निर्माण ब्रह्म दबंते निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। 12वें अध्याय में आया है कि संनिमेंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समुपद्या ये प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूते देवता। इंद्रिया आदि को समझ प्रश्न करके संनिमेंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समुबुद्धि जिनकी सब जगह समुबुद्धि है, जैसे अभी ये प्रश्न चल रहा है ऐसे समुबुद्धि से सबुद्धि समुबुद्धि होने वाले सर्वत्र समुद्ध है ते प्राप्त मामेव सर्वभूति थी रहता वह भगवान ते मामेव प्राप्त मेरे को ही प्राप्त करते हैं। 12वें अध्याय में सगुण निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ है ऐसी बात पूछी है, उनमें सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बताया है। उसमें कहा है कि ऐसे है संनियमेंद्रिय ग्रावम ये दो श्लोकों में ये तक्षरम अनिर्देशम अभ्यक्तम परिपार्थे सर्वत्र गम अचिंतन से कूटस्तम अचलम ध्रुवम ऐसे आठ विशेषण दिए स्वरूप के और संनिमेंद्रिय ग्राम तीन बात इसमें बताई संनिमेंद्रिय ग्राम सर्वत्र समृद्ध और सर्वभूति देवता मामेव प्राप्तवन्ति संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तो मेरे को प्राप्त होते हैं या सगुण भगवान की बात बताई वह ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म की बात बताई। आप निर्गुण की प्राप्ति चाहते हैं क्या सगुण की प्राप्ति चाहते हैं तो सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में आपकी रति प्रीति होनी चाहिए। इसी प्रीति को वहां का आत्मोपमेय जैसे शरीर में आपकी प्रीति है पूरे शरीर में चरणों में भी आपकी प्रीति वैसी है हाथों में भी वैसी है मस्तक में भी वैसी है ये उत्तमांग कहलाता है। प्रीति इसमें कोई ज्यादा हो और पैर सबसे नीचे कहलाते हैं उसमें प्रीति कम ये बात नहीं है। सर्वभूत हिते रहता तो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अपने उपमा से और शरीर की उपमा से सबका हित करता है सबको आराम पहुंचे हित भरे और आराम इतना ही नहीं सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो सबको भगवत प्राप्ति हो सबको तत्व ज्ञान हो सबको भगवान का प्रेम प्राप्त हो सबको भगवान के दर्शन हो इसमें जिसकी रति है रति की बड़ी महिमा है। रति नाम प्रेम का है वो प्रेम की बहुत बड़ी महिमा है। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सब में रति आती है। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समान नित्यम पुष्यंति च रमंति च ये बनाया है। कर्मयोग में स्वे स्वे कर्मणि अमिरता संसिद्धि लभती नरक उसमें भी रति आई है। तो अपने कर्तव्य में रत रहे एक बात और है कर्म में रति एक और चीज है आसक्ति और चीज है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता बताया यहाँ परंतु प्रेम की बात जहाँ बताई है वहाँ रति की बात नहीं है वहाँ है आसक्ति। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तलोच्यते योगारूढ़ के विषय में भगवान ने कहा कर्मों में आसक्ति न करें नहीं नेन्द्रियार्थेषु न से कर्मसु अनुसज्जते आसक्ति न करे। तो कर्मों में आसक्ति नहीं करने की बात बताई और स्वे स्वे कर्म बनी अभिरता बताई रति बताई कर्मों में रति नाम प्रीति का है। तो संसार में जो होती है वो आसक्ति होती है उसी को काव्यादि में रति कहते हैं परंतु वो आसक्ति पूर्व होती है। तो आसक्ति है वो अपने लिए होती है रति है वो दूसरों के लिए होती है प्रभु में रहती है संसार में विश्व कर्म अभी रहती है। तो कर्तव्य में अभी रहती है वहाँ स्वार्थ नहीं है। उदाई नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए कर्मों में। यदाई नेन्द्रियार्थेषु न दोनों में न पदार्थों में आसक्ति हो न क्रियाओं में आसक्ति हो क्रिया में आसक्ति होगी तो ही बंधेगी और पदार्थों में क्रिया के फल में भी आसक्ति होगी तो बंधन होगा इसमें आसक्ति नहीं आनी चाहिए। तो योगारूढ़ योग की प्राप्ति कब होगी यदा ही नेन्द्रियार्थेषु इंद्रियों के अर्थों में विषयों में भी आसक्ति न हो न कर्मसु न क्रियाओं में आसक्ति हो। सर्व संकल्प संन्यासी संकल्प है मन की एक फूर्णा होती है एक मन का संकल्प होता है। फूर्णा तो जैसे हम आए कुछ देख लिया सामने वो बात याद आ गई गाय याद आ गई, पक्षु याद आ गया, पशु याद आ गया, मकान याद आ गया, ये पूर्णा होती है। आसक्ति जिसमें है सत्ता और स्वार्थ, उसी सत्ता बांधते हैं और स्वार्थ है, पक्षपात है, उसको मन छोड़ता नहीं, ऐसे जो याद करता है वो होता है संकल्प। जिसमें सत्ता आसक्ति आग्रह रहता है वो संकल्प होता है, और सत्ता आसक्ति आग्रह नहीं है, सत्ता है मात्र, पूर्णा होगी याद आ गया, वो नहीं। आसक्ति होती है बांधती है, पूर्णा मात्र बंधन नहीं करती। विश्वास से मन के जीतने के लिए अभ्यास कौन थे, वैराग्य जगह थे, तो मन में एक आसक्ति होती है एक पूर्णा होती है, दोनों के लिए ही अभ्यास और वैराग्य बताया। वैराग्य तो आसक्ति का त्याग के लिए और अभ्यास पूर्णा के त्याग के लिए, वह दो उपाय बताए। यही योग दर्शन में अभ्यास वैराग्य निरोधकों का निरोध करने के लिए, तो ये दो उपाय बताए। तो आसक्ति और बांधने वाली है वो चाहे कर्म में हो चाहे कर्म फल में हो, वो बांधती है। तो आसक्ति किसी से नहीं चाहिए, परंतु कर्म को करना चाहिए बड़े प्रेम से, तत्परता से, ठीक सांगोपांग करना है, मन लगाकर, बुद्धि लगाकर, विचार पूर्वक ठीक तरह से सुचारू रूप से कर्म करना है, पर आसक्ति नहीं करना है। इसलिए त्याग करने से भगवान ने कहा शुभ मुखे सदय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तत्व युद्धा युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। इस तरह से पाप नहीं लगेगा युद्ध करने से। अर्जुन कहता है कि पाप में वह श्रेय असमान आत्ताय को मारने से पाप लगेगा, युद्ध करने में पाप लगेगा। भगवान कहते अथ जो तुम एवं धर्म संग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान के पाप लगेगा, युद्ध न करने से पाप लगेगा। फिर पाप से बचने का उपाय क्या है, दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जो जय पराजय हानि लाभ सुख दुख को समान करके मन उसमें प्रसन्नता और दुख नहीं होना चाहिए। न प्रेत प्रेम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य साफर्य सर्वद्र संगोडो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित न प्रेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत अप्रियम प्राप्य। प्रिय प्रिय की प्राप्ति में हर शोक न हो, राग द्वेष न हो, विषमता न हो, पक्षपात न हो, ऐसी समता हो, उस समता को रख करके तुम युद्ध करो तो पापम न वापसी पाप नहीं लगेगा। अब दोनों प्रश्न आए, पाप युद्ध करने से लगेगा न करने से लगेगा, कहते युद्ध करने से ही पाप नहीं लगेगा जिसमें पाप की संभावना है। इस वास्ते भगवान ने कहा ऐसे सम कर तो युद्धा युद्ध से हो जाओ तैयार, पाप नहीं लगेगा। तो पाप न लगने का कारण है समता और पाप लगने का कारण है राग द्वेष। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थी राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर नवस्मागे तो जैसे परिपंथी न हो, तुम्हारे परिपंथी दो ही है, ये मार्ग में लूठे रहे शत्रु ये दोनों है, राग और द्वेष ये नहीं है, दोनों ही ठीक तरह से काम कर दो तो यश्य नाहकृत भाव बुद्ध यश्य न लिप्य थे हत्वा भी श्रीमान लोग न हंते न निबद्ध थे। अभिमान भी नहीं है और बुद्धि का लेप नहीं है, राग द्वेष में लेप होता है, वो आकर्षण होता है विकर्षण होता है, ऐसे वो लेप होता है बुद्धि में लिप्तता आ जाती है, तो वो लिप्तता ना हो हत्वा भी श्रीमान लोकान सर्वांश लोकान संपूर्ण लोगों को हत्वा भी न निबद्धते वो बनता नहीं अंतिम न निबद्धते न मारता है न बनता है। मारता क्यों नहीं है कि उसे राग द्वेष है ही नहीं, तो वो युद्ध में हो जाए काम हो जाए कर्तव्य प्राप्त हो जाए। जैसे अर्जुन को युद्ध का कर्तव्य प्राप्त हो गया, पांडवों ने युद्ध न हो ऐसे बहुत उद्योग किया पर दुर्योधन ने नहीं माना। भगवान गए एक ब्राह्मण को भेजा, फिर भगवान गए संधि का प्रस्ताव दे गए तो अर्जुन ने साफ कह दिया यावधि तीक्ष्ण सूच्य विधि अग्रण केशव तावद अपि न परित्याज्य अपरित्याज्यम भूमि न पांडवान प्रति। पांडवों को तीखी सुई की नोक लगे इतने मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तो वो युद्ध अर्जुन को स्वतः प्राप्त हुआ, दुर्योधन को स्वतः प्राप्त नहीं हुआ है। दुर्योधन ने जिद करके युद्ध किया है तो पाप लगेगा, तो उसको लगेगा तुम चाहते ही नहीं युद्ध करना, लगते तो तुम शुद्ध करो तो पाप नहीं लगेगा। किसी भी शुद्ध समूत्व जय पराजय हो उसमें दो ही बात होती है, सुख दुख के समय के तो लाभा लाभ हो जया जय लाभा लाभ हो जया जय जया जय सुख दुख जया जय लाभा लाभ हो और चार बात है। पहले कारण है युद्ध, युद्ध के बाद होते है जय पराजय, जय पराजय के बाद होता है सुख, तो सुख दुखे सदे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो लाभा लाभो सुख दुखे समय कृत्वा, तो दो युद्ध आयु फिर तुम युद्ध करो। तो इसमें लाया क्या बात आई कि युद्ध में है लाभ अलाभ होगा, विजय होगा तो लाभ होगा और पराजय होते हानि हो जाएगी अलाभ हो जाएगा, और इसके बाद में जय और पराजय इसमें सुख फिर सुख दुख फिर सुख दुख के समय लाभा लाभ जया जय इनको समान समझ करके फिर युद्ध करो पाप नहीं लगेगा। तो पाप लगने में हेतु राग और द्वेष बताए, राग पूर्वक करोगे ग्रहण तो पाप होगा, द्वेष पूर्वक त्याग करोगे तो भी दोष होगा, ग्रहण त्याग भी राग द्वेष पूर्वक नहीं। तस्मात शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्था, तो ग्रहण और त्याग शास्त्र की दृष्टि से करो, अपने राग द्वेष से नहीं, शास्त्र की दृष्टि से काम करो क्या ग्रहण करानी चाहिए। यही बात वहाँ आती आत्मोपमेद में तात्पर्य यही है कि शास्त्र की दृष्टि से कर्तव्य अच्छी तरह से पालन करो और समता रखो, तो व्यवहार में समता रखना है। ये समता क्या है, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करना और दूसरों को सुख पहुँचाना हित करना, ये भाव रख करके तुम आचरण करो तो वो परम योगी हो जाएगा। तो शरीर के साथ आत्मोपम में सर्वत्र समम पश्चिति और न सुखम व दुखम, सुख दुख को समान देखता है। व्यवहार करने में नहीं, व्यवहार करने में तो हमारा एक ही हाथ है, ये उत्तम हाथ कहलाता है, अच्छा कहलाता है। तो दान पुण्य पूजन आदि के साथ से किए जाते हैं, तो इस हाथ की सब अंगुलियां भी हमें बरोबर है, पर कोई पूछे कि रास्ता किधर जाएगा, यहाँ से बिहारी जाना है कौन सी गली कैसे है, तो ऐसे बता ऐसे ऐसे चले जाओ, अरे पूछे कि कौन सी गली है ये है, तो लड़ाई हो जाएगी। ऐसा नहीं कहा था ये कहते क्या, ये कहते क्या हुआ, फर्क क्या हुआ, ये भी हाथ है ये बात हाथ है, यह व्यवहार में ही नहीं हुआ। ऐसे पूजन करो तो यूं करो तो नहीं होगा, ऐसा मुझे ऐसे करो। अंगुलियों में भी हमारे फर्क है, हाथ पारे में फर्क है, सब अंगों में हमारे फर्क है, वो सब यथा योग वर्ण आश्रम के अनुसार सब ठीक यथा योग शास्त्र की रीति से बर्ताव करते हुए सुख दुख को समान समझ के दूसरों के हिते रता प्राणियों के हितमा हितमा रत रहते हुए तुम काम करो। तो आत्मोपमेद, जैसे शरीर में किसी के हम चलते हैं पैर लग जाए, आए बीच में पैर लग जाए, हाथ जोड़ माफी मांगते हैं तो माफी गया, हाथ लग गया फिर पैर लगाते हैं, हाथ लगाते हो फिर कभी उसे माफी मांग लो, पैर लग गया तो पैर लग गया तो माफी मानो और हाथ जोड़ दे माफी नहीं, और साथ हमारा अंग हाथ है, हाथ ही हमारा अंग है, पैर भी हमारा अंग है, ऐसा नहीं कोई कहता आइए बैठिए ऐसा करेंगे या लात सामन थोड़ी करेंगे। बर्ताव में जैसी शास्त्र की आज्ञा है, जैसा व्यवहार है, जैसा उचित है, जैसे शास्त्रीय दृष्टि है, वर्णाश्रम की जैसी दृष्टि है, उस दृष्टि से यथा योग्य बर्ताव करें। परंतु सुख आत्मोपमेन, सुख और दुख को देखा जाए शरीर की उपमा से, तो ये व्यवहार में आने की चीज है खास, ये केवल कथा की नहीं है, केवल कहने और सुनने की बात नहीं है, बर्ताव में ऐसा करो। कहे कि चोरो वा यदि चांडाल यदि वा पितृघातक वैश्व देवे तो संप्राप्त सोत थी सर्वभाजना, चोर हो चंडाल हो चाहे बाप के मारना वाला ही हो, रसोई मनगर तैयार हो जा भोजन भी देता। ये हमारी कितनी उदार रीति है, इसी तरह से वहाँ भोजन दे देने में तो वहाँ आत्मोपमेद, अपने जैसे चाहते हो वैसे औरों के लिए हित चाहो, तो सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में रति होनी चाहिए। व्यवहार करने में विषमता आएगी परंतु विषमता वो दोषी नहीं है, व्यवहार की विषमता दोषी नहीं है, दोषी नहीं है आवश्यक है, जरूर करना चाहिए, जैसे आज दंड देख विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तनी सुनिचे व सौभाग्य चे, ये मुख्य श्लोक है उनका जो आज भी समता कहते हैं। जिसमें समता करो तो हाथी और कुत्ते में करोगे व्यवहार करेंगे, क्या हाथी का कुत्ते का खाना एक होगा, क्या हाथी पर चढ़ कुत्ते की सवारी करेंगे, गाय को दूहेंगे कुत्तिया को दूहेंगे क्या? ये जिसमें व्यवहार एक हो सकता नहीं और करना चाहिए नहीं, वे प्राणी दिए भगवान ने, कि जिसमें व्यवहार आपको अलग अलग करना पड़ता है और करना चाहिए, ऐसी जगह भी दुख गाय के हो गया तो हम विशेष करेंगे, कुत्ते हो गए तो कोई परवाह नहीं, ये नहीं होगा। सुख तो सबको पहुंचे, प्राणी मात्र को ब्राह्मण गवि हस्तिनी स्वपाग्य से पंडित पंडिता समर्शिना, तो ब्राह्मण कैसा लेना, उसमें विद्या और विनय हो, विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रता पात्रता धर्मावलोकति धना धर्मम तथा सुखम, तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण लेना, और वो जा अशुद्ध आती पाद बढ़िया नहीं है, स्वपाक लिखा है चांदा नाम लिखा स्वपाक सुनम पसती, कुत्ते को बचाकर खा जाए चंदाल भी ऐसा लेना, साफ आचरण भी जिस ऐसे हो जाति से भी ऐसे हो, तो ऐसा जाति से आचरण से नहीं चाह, और ब्राह्मण है कैसे आचरण से ऊंचा, विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण ही, अरे गवि हस्तनी सुनी से उपा के, तो इसमें ऐसा लेना कि जो पूरे पूरे एक समान बर्ताव आप कर नहीं सकते, और ये पूर्ण पूर्ण है शुद्ध रो पूर्ण अशुद्ध है ऐसा, उसके साथ भी सुख दुख में बरोबर करो, किसी को कष्ट न हो किसी को दुख न हो, क्यों सर्वभूत तेरदा, तो किस तरह से आत्मोपमेन कैसे हित करे, जो शरीर के ऊपर करते हैं तो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिना सुखम वायु दुखम सहयोगी परमो मत, वह योगी परम है श्रेष्ठ उत्तम माना गया, तो उत्तम श्रेष्ठ कौन है, सबके साथ समान वर्तात है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, भक्त होता है वो यो माम पश्यति सर्वत्र, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने कर्म योगी ज्ञान योगी आदि के लिए इतना दुर्लभ नहीं बताया है, भक्ति के मार्ग में ये बात है, चतुर्विधा भजन थे माम आतुर जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, तो ज्ञानी कहते हैं वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा ज्ञान मेरे सर्व होता है, सब में भगवान की बुद्धि, तो यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह मेरे को देखे, हमारे प्रभु है सब, हमारे प्रभु है वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व नहीं करना चाहिए, वासुदेव सर्व ऐसा होना चाहिए जो ठीक विभूति हो जाए ठीक बैठ जाए, पर भगवान वासुदेव सर्वम कहा, सर्वम क्यों कहा, ये एक शेष होता है वहां नपुंसकलिंग होता है, वहां पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता, तो सर्व है सर्वा और सर्वम सर्वम एक शेष शब्द देगा, इससे सिद्ध हुआ कि स्त्री हो पुरुष हो नपुंसक हो रोगी हो निरोग हो अच्छा हो मंदा हो भला हो बुरा हो कैसा ही हो सबका सर्व सर्वम शब्द से आ सकता है, इस वास्ते वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ, तो सबको परमात्मा को देख दिया, वो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह मेरे को देखता है, भगवान है मेरे प्रभु है मेरे प्रभु है मेरे प्रभु है, इस वास्ते भागवत माया विसृज्य स्वयमानान स्वान विषम पीड़ांत देहि किम प्रणवे दंडवत भूमा आश्व चांडाल गुरु कर भूमो प्रणवे पृथ्वी को दंडवत करे, तो आश्व चांडाल गोर खरम चार बताए, तो जब वो कुत्ता हो चांडाल हो गऊ हो गधा हो वहां नमस्कार करने में भगवान को सब जगह देखना, तो सबको नमस्कार करना है, बर्ताव समान नहीं आती है, बात समान करवानी चाहिए कर सकते भी नहीं, तो सब जगह पंडिता समदर्शन समदर्श समृद्ध पंडितों मत पिता में भागवत नहीं लगा है, तो समझ अक्रूर क्रूर के चाहिए समझ पंडितों मत समदृष्टि से सब जगह, तो आत्मोपमेन सर्वत्र अब सब जगह समदृष्टि देगी, तो उपमा क्या ले, उपमा में शरीर लिया भगवान ने जो सबके अनुभूत है, उपमा वो दी जाए सर्वानुभूत हो उन्हें समझना हो तो वही बात दी जाएगी, तो शरीर को लिया सामने, तो शरीर में हम सब कोई ठीक करते हैं, परंतु शरीर ही को देना चाहिए, जिन अविवेकी पुरुष शरीर ही उसकी उपमा देना है। तो आत्मा शरीर का व्रत क्यों लिया कि शरीर में देहाध्यास जिसका चाहते है शरीर का ही पालन पोषण करता है इस तरह के आदमी तो शरीर वो उपमा देनी विवेकी की नहीं देनी है। विवेकी वो तो शरीर की उपेक्षा रखता है तो उसी उपेक्षा की नहीं लेनी है किन्तु आत्मोपमेन मात्र जितना जो सामान्य है दृष्टान्त अथवा को उदाहरण दिया जाएगा तो सर्वमत भी दिया जाएगा सर्वमत का दिया जाएगा एक मत का नहीं दिया जाएगा ज्ञानी महात्मा का नहीं सामान्य रीति से जो सब में है शरीर उस शरीर की जैसे रक्षा करता है उसका उपाय करता है उसमें सुख दुख से बरोबर समझता है ऐसे यो माम पश्चित सर्वत्र सब जगह भगवान को देखता है तो पूज्य देखता है तो भक्ति मार्ग वाले के लिए तो यो माम पश्यत सर्वत्र सर्व समय पश्यती है। ज्ञान मार्ग वाले के लिए योग सर्वस्थ सर्वभूतस्थ आत्मान सर्वभूतान से आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वभूमि समदर्शी समदर्शी है पर समकृत रहते हैं सर्वभूतस्थ आत्मान अपने स्वरूप को सब में देखे और सर्वभूतान से आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन वो सब जगह समान देखता है तो ये आत्मा में विधायक होगा। आत्मरति है विषय ज्ञान में आत्मदृष्टि होती है मेरा ही स्वरूप है शनि शनि उपरमेत बुद्धि की दया आत्म संस्तु मन कृत्वा न किंचित चिंतित वहाँ आत्मा देना का अपना जो स्वरूप देना है वह शरीर नहीं लिया जाएगा वो सब जब देखता है तो आत्म संस्तु मन कृत्वा न किंचित चिंतित तो सर्वभूतस्व आत्मान सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग सर्वत्र समदर्शन ऐसे कर्मयोगी के लिए कर्मणि अकर्म या पश्य न कर्मणि से कर्म या सब बुद्धिमान मनुष्यु सयुक्त कर्म ये कर्मयोगी के लिए तो कर्मयोगी के लिए ये बात है ज्ञान योगी के लिए ये बात है भक्ति योगी के लिए ये बात है वो सुख पहुंचाना कर्म है योग समत्वम योग उच्चते योग की परिभाषा भगवान ने समता की है तो कर्मयोग में समता की मुख्यता है ऐसे योग के अर्थ गीता में कई है गीता दर्पण में हमारे अलग अलग बताया कौन सा है तीन तरह से योग बनता है युद्ध योग से योग बनता है युद्ध समाधान से योग बनता है युद्ध संयम ने धातु से भी योग बनता है पर योग बनने पर वह पत्ते करने से कुत्तो योग बन जाता है युद्ध धातु से तो वो योग क्या लेना चाहिए समता मुख्य गीता का है समत्वम योग उचित है तो समता रखना समता क्या है सबका आदर सत्कार वो समता रखना है तो कर्मणि अकर्म ये परिचित अकर्म कर्म और अकर्म दो शब्द आए बड़ा जटिल अर्थ है इसका चौथे अध्याय में तत्ते कर्म प्रवक्ष्या में यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात ये 16वां श्लोक होता है तो इससे 32वें श्लोक तो 33 श्लोकों में ये वर्णन किया है वहां 32वां श्लोक चौथे का एवं बहुविधा यज्ञा विदिता प्रभुके कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष उपक्रम में एवं ज्ञातवा विमोक्ष तो ये 33 लोगों का है इसमें 33-32 तक छोड़ो ऐसे 17 श्लोक है तो इसमें क्या बताया कर्म में अकर्म अकर्म कर्म किम कर्मा किम अकर्मेति कवियो पित्र मोहिता ये जटिल थोड़ा खुलासा कर देता हूँ कर्म अकर्म विकर्म ये भगवान ने बताया पहले जन्म कर्म से वेदी व्यम अभी जो श्लोक पढ़े भगवान के अवतार के ये श्लोक स्मरण से पढ़ते हैं सब याद कर ले गीता के एक श्लोक दो श्लोक तो क्रोध हो भगवान के श्लोक 5 श्लोक याद कर लो ये सदा पाठ करना जैसे याद हो जाए स्मृति सब तो ये गीता का चलते फिरते पाठ कर रहे तो भगवान ने अपने जन्म की बात बताई जन्म कर्म से मैं दिव्य बताया तो भगवान के कर्म दिव्य है कि आश वो दिव्यता क्या है दिल कर्म में ना कामना है ना आसक्ति है ना पक्षपात है ना विषमता है समता रूप से सर्वभूत है जैसे भगवान सूर्यदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र का सूर्य बरोबर कोई पापी हो दुरात्मा हो महात्मा हो संत हो ऐसे ही भागवत माया शुद्ध सर्वदेही नाम मात्र प्राणियों के लिए वे शुद्ध होते जो संत महात्मा होते हैं और भगवान कहते हैं शुद्ध सर्वभूता नम ज्ञातवा शांति मिल सती सबको छोड़ दे, ऐसे कर्मयोग ही होता है, सबकी सेवा करता है। कर्मयोग में सेवा मुख्य है, अपना स्वार्थ अभिमान न रख करके सेवा करना सबकी। तो सब कर्म करने से क्या होता है, एक मार्मिक बात है। कर्म में आसक्ति और कामना से रहित होने पर कर्मों में दिव्यता आ जाती है। भगवान कह रहे कर्म से में दिव्य दिव्य कर्म है, अलौकिक विलक्षण शुद्ध कर्म है। दिव्य क्रीड़ा विलक्षण सब राजा बहुत अलौकिक विलक्षण कर्म है, वो शुद्ध कर्म है, निर्मल कर्म है। इस वास्ते भगवान के गुण सुनो, भगवान की लीला सुनो, सब पवित्र करने वाली है। कैसी लीला हो, किसने की बात हो, भगवान की है। एक बात याद आ गई, भगवान जब संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहे थे तो बीच में देखा कई ऋषि मुनि तपस्वी जंगल से रहने हुए शहर में जा रहे हैं। तो भगवान रथ से उतर करके सब आदर करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। कि महाराज आपका वहाँ व्याख्यान होगा राज्यसभा में, वो सुनने को जा रहे हैं। वहाँ वो कोई भूमिकाओं का विवेचन होगा, कोई योग की बात होगी, वहाँ तो संधि की लड़ाई की बात होगी। तो ऋषि मुनि सब तपस्या छोड़ करके व्याख्यान सुनने के जा रहे हैं, कहने वाला कौन है। वो कुछ गए, वो सबकी सब लीला विचित्र है, वो सभी दिव्य जन्म कर्म में दिव्य है, अलौकिक है, विलक्षण है। सभी वो भी चरित्र सुने तजी ध्यान, ध्यान सुन करके चरित्र सुनते हैं भगवान के। तो भगवान की लीला सबके लिए आनंद देने वाली है, वो कैसी हो चाहे। उसमें देखो बालकांड भी आता है, विवाह की बात में लंका कांड भी आता है, भगवान की लीला सब आते हैं, सब विषय आते हैं, पर भगवान की लीला सुनते हैं, वो सभी महाराज वर्णन करते हैं। तो भगवान की लीला मात्र कल्याण करने वाली है। तो उनमें क्या जन्म कर्म दिव्य है। तो दिव्य क्या है कर्म में, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, पक्षपात नहीं है, विषमता नहीं है, ऐसे कर्म दिव्य हो जाते हैं। तो वो कर्म अकर्म हो जाते हैं, कर्म नहीं रहता, वो क्रिया होते हुए भी क्रिया रहती, कर्म नहीं होता। क्रिया और कर्म में भेद है, ये क्रिया हुई, वृक्ष हलते हैं, कपड़ा सुखा भी हलता है, क्रिया तो होती है, कर्म नहीं होता। कर्म मानो शुभ अशुभ फल जनक होता है, वो कर्म होता है, और शुभ अशुभ फल जनक न हो और बंधन कारक न हो वो क्रिया होती है। तो कर्म योगी क्रिया होती है, कर्म नहीं होते। इस वजह कर्मणो बोधव्यम, बोधव्यम से विकर्मण, अकर्मण से बोधव्यम, गहना कर्मणो गति, किम कर्म किम आवते, कोई पत्र मोहिता, वे भी मोहित हो जाते हैं। तो कर्मों में आसक्ति आदि न रह सको, अकर्म हो जाता है। तो कर्मणी अकर्म या पश्चित, कर्म करते हुए अकर्म देखे, मानो उस क्रिया का होना पड़ा नहीं हो, मानो बंद नहीं हो, फलजनक न हो, निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए किया जाए कर्म, वो बंधन काल फल का उसका नहीं होता, किंतु अंतर शुद्ध होगा। चौथे आदि का 23वां श्लोक
मुक्त
समय मुक्त से क्या नाम अज्ञा आचरता कर्म समग्र प्रवलिए थे, कर्मयोग हो सर्व प्रवलिए थे, सब कर्म लीन हो जाते हैं। निष्काम भाव से करने वाले कर्म सब निष्फल हो जाए, मानो फल नहीं देते। एकादश में निष्फल शब्द निष्फल आया, जहाँ कर्मयोग का वर्णन आया 20वें अध्याय में एकादश में, वहां उसे निष्फल बताया, नाम ही निष्फल साफ, मानो वो बंधन कारक नहीं होता। इसमें निष्फल ये नहीं है कि वो निरर्थक होता है, यह मतलब नहीं है, बंधन कारक फल नहीं होता। तो बंधन कारक फल नहीं हुआ, वो कर्म अकर्म है। तो कर्म करते हुए अकर्म होना चाहिए, और अकर्म रह करके फल जनन न करके भी कर्म करना चाहिए। तो अकर्म की मुख्यता हुई, तो कर्मयोग में है कर्मणि अकर्मीय पश्यत, अकर्म से कर्मीय, और भक्ति मार्ग में है यो माम पश्यति सर्वं समय पश्यति, और आत्मा सर्वभूत आत्मा से ये ज्ञान योग के लिए है। तो अकर्म में कर्म, कर्मों के साथ लिप्तता न रहे, माम पश्यति का भगवान रहे, आत्म से आत्मा रहे, ऐसे कर्मों में अकर्म बना रहे स्थायी, मानो आसक्ति आदि न हो, तो वो समग्र पर मिलिए थे, उसे कर्म सब लीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो कर्म बंधन कारक नहीं रहते। तो ऐसे आत्मोपम्येन सर्वत्र समम, आत्म शरीर की उपमा से सब जगह सम्बुद्धि, सुखम यदि वा दुखम, सहयोगी परम मत, वो परम श्रेष्ठ योगी माना गया। व्यवहार जिसका ऐसा ही होता है कि सबके हित का होता है, स्वाभाविक ही कर्म करते हैं तो वो सबके हित का करते हैं, नहीं करते हैं सुख रहते हैं, उसमें भी हित होता है। परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी योगी हो, कर्म योगी हो, भक्ति योगी क्यों न हो, उनके सबका हित स्वतः स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक। ये अहित करने वाले स्वार्थ है, कामना है, पक्षपात है, विषमता है, ये अहित करने वाली चीज है। इनसे रहित कर दिया जाए तो कर्म मुक्ति करने वाला होता है। शास्त्रों में आता है कर्मणा पद्धति जंतु विद्या विमुच्यते, कर्म से तो बंधता है, विद्या से मुक्त होता है, तो कर्म से बनता है, कर्म योग से नहीं। भक्ति है, भक्ति योग है, ज्ञान है, ज्ञान योग है, कर्म है, कर्म योग है। योग साथ में लग जाता है वो समता आ जाती है, समत्वम परिभाषा समत्वम योग उच्चते, तो वो कल्याण करने वाला होता है। योग नहीं होने पर, भक्ति होने पर भी भक्ति हो जाएगी, भक्ति योग नहीं होगा। भक्ति योग निष्फल, कोई इच्छा नहीं है भगवान का भजन है, वो भक्ति योग है। ऐसे ज्ञान का विचार है तो सीखी हुई पंडिता होगी, वो योग नहीं होगा, वो विद्या है, ज्ञान है, ज्ञान योग नहीं है। ऐसे कर्म है उसमें संभव नहीं होगा तो कर्म हो गए उससे बंधन होगा, अरे योग होगा तो बुद्धि हो जाएगा। हठ योग, लय योग, राज योग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, जो कुछ योग आ जाएगा सब उसमें समता आ जाएगी। समता आ जाएगी सुख दुख के समय कृपा लाभ होगी, श्रद्धा सब जगह एक ही सिद्धांत तो क्षमता, तो उस क्षमता पूर्वक काम करेगा तो वो कल्याण करने वाला ही होगा, उद्धार करने वाला ही होगा। तो तीनों में ही भगवान ने ये बात बताई, कर्मणि अकर्म, अकर्म से कर्म, आत्मास्थ आत्मा वो सर्वभूतस्थ आत्मान सर्वभूतानि च आत्मने यो वाम पश्यति सर्वदा सर्वसमयि पश्यति। तो आत्मा, भगवान और अकर्म, ये तीनों चीज एक, अरे वहां जाते उसे भी एक हो जाते हैं। अंत में ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी एक हो जाते हैं। तो कर्म योगी करे तो उस कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए 32वां श्लोक आया, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम आयु दुखम सहयोगी परमो मत। इसके ऊपर अर्जुन ने प्रश्न किया, योग कैसे चंचल अथवा दो श्लोक से पता है, चंचल होने से दो श्लोक उत्तर दिया है भगवान, इतने और विषय में कम नहीं बोले, 5, 10, 15, 20 श्लोक बोलते गए, 30-40 श्लोक बोलते गए। यहाँ दो ही तो अर्जुन के प्रश्न दो श्लोक है, दो श्लोक में उत्तर है। तो मन की एकाग्रता पर इतना जोर भी दिया है, समता पर जोर दिया है भगवान ने। समता रखते हुए आप व्यवहार करो, एकांत में भजन से भी श्रेष्ठ हो जाएगा जैसे समता नहीं है। इस बार तपस्वी भी हो देगो योगी, ज्ञानी भी होगी मतो देगा, कर्मी प्रसाद देगो योगी, तस्मात योगी भवार्जुन, योग युक्त आठवें में, योग युक्त भवार्जुन छठे में, तस्मात योगी भवार्जुन। तो समता रखो, हरदम समता रहते हुए सब काम करो, कोई बंधनकारी फल नहीं होगा, उसको बंधन देने वाला फल नहीं होगा। अंतकरण शुद्धि हो जाएगी, शुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा की तत्व की, क्यों अशुद्धि ही बाधक है, और बाधक क्या है। अंतर्गत सब समता में आ जाओ तो समझो परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। तो आत्मोपमेन सर्वत्र, तो कर्म करते हुए भी अकर्म रहो, और सब जगह परमात्मा देव परमात्मा को देखते रहो। ज्ञानी हो, ज्ञान हो तो सर्वभूतों से आत्मा सर्वभूत आत्मा को ही देखते रहो, वही दृष्टि आत्मदृष्टि, परमात्मा दृष्टि और अकर्म दृष्टि, ये होते ही तीनों एक हो जाए। ज्ञान योग सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगी गम्य थे, एक सांख्य योग से अपश्यति से अपश्यति, दोनों का फल एक ही होता है। अर्जुन ने 5वें अध्याय में ये पूछा है, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुरे योग संसि ये योगे की तन्वे ब्रूश निश्चित बताओ। तो भगवान कहते हैं निशेष करो उभव, संन्यास कर्मयोग निशेष करो उभव, तय सुक्रम संन्यास कर्मयोग विशिष्य थे, परंतु दोनों का फल एक है, निशेष करो कल्याण करने वाले, कल्याण होने पर वहां सब एक हो जाते हैं। जैसे संतों ने कहा है कि पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अर्ज की धुरे एक ही ठोर, अर्ष चलता है उसमें माड़ा रहती है, सब माड़ा घड़ी में बनी हुई वो जल में होकर परगट जाती है, तो भूलती है कि जगह सब है। तो पहुंच जाए ठेर, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अर्ज की धुरे एक ही ठोर, तो अंतिम एक ही निर्णय होगा। ज्ञान योग का भी वही होगा, भक्ति योग का भी होगा, और कर्म योग का भी होगा। एक बार ख्याल करो, याद आ गई, आप चाहे भक्ति मार्ग में चले, चाहे ज्ञान मार्ग में चले, चाहे योग मार्ग में चले, दूसरे किसी योग की निंदा मत करो, उसका तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, उसको नीचा मत समझो, वो आपके बाधक हो जाएगा। जैसे आप भक्ति करते ज्ञान मार्ग को नीचा समझते हैं तो आप भक्ति में बाधा हो जाएगी, क्यों आप जिसको नीचा समझते निंदा करते हैं वहां आपका भगवान नहीं है, आपका भगवान छोटा हो गया। और आत्मा की ज्ञान मार्ग में चलता है और भक्ति की भक्ति निंदा करता है, नीचे समझता है, तो आपका ज्ञान भक्तों में भक्ति में नहीं है, आपका ज्ञान छोटा हो जाएगा। ऐसे योग में समझते हैं हम ज्ञान योग की कर्म योग ज्ञान भक्ति योग की निंदा करें, तो आपका भक्ति योग में ज्ञान योग में आपका योग नहीं है, अपने ही उपासना छोटी हो गई, दूसरे दूसरा नहीं अपनी, दूसरे तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, दूसरी आदि बाधा होती है। तो हरेक साधक को चाहिए अनुसरण अपना करे, जैसे पतिव्रता होती है वो कहती मेरे परमात्मा है ये, तो आपके परमात्मा है तो ये आग्रह नहीं करते कि हमारा परमात्मा है, देखो तुम सब जानो हमारे ये परमात्मा है, ये परमात्मा तेरे है हमारे थोड़ी है, हमारे परमात्मा हमारे घर पर है अपनी अपनी, तो इस तरह से हमारे भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, हमारे योग श्रेष्ठ है, परंतु तुम्हारा पति हमारा पति है परमात्मा, तुम सब हमारे पति को मानो, क्यों माने तुम्हारे पति को, तो उपासना अलग अलग होती है, मन तत्व अंत में ठीक उपासना करो एक तत्व तो पहुंच जाते हैं। इस वजह से पक्षपात मत करो, निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो, नीचा मत मानो कि साधक नीचे है, ज्ञान मार्ग वाले तो ऊंचे है, भक्ति मार्ग वाले नीचे है, योग वाले और नीचे है, ऐसा नहीं है। ठीक पास करो तो एक बात ही होती है, गीता ने सबकी महिमा कही है, ज्ञान योग की कर्म योग की भक्ति योग की टीका है, अलग अलग भक्ति योग की टीका में ज्ञान योग लोगों नीचे बता देते हैं, ज्ञान योग की टीका वाले भक्तों को नीचे बता देते हैं, तो ये बात ठीक रहेगी। गीता मूल आप देखो तो सबका समान नीतिश आदर है, अनुसरण अपना करो, सबके पति ऐसे हमारे पति परमात्मा है साक्षात, इस तरह से अपना जो इष्ट है, अपनी जो उपासना है, अपना जो ध्यान है वो एक रखो, पर निंदा किसी की नहीं, अपमान किसी का नहीं, नीचा किसी को नहीं समझे, भाई अपना अपना कर, अल्लाह खुदा कहता है वो जोर से बोलता है, उसमें बोलने को भी ऐसे मत समझो कि ये खराब है, अरे भगवान की उपासना करते हैं परमात्मा की, एक पानी है उसको वाटर भी कह देते हैं, जल भी कह देते हैं, नीर भी कह दे, अप भी कह दे, पन भी कह दे, जल नाम पन भी जंगल होता है कि जल है एक, वो वाटर के अगर पिए तो वही है, पानी पहकर पिए तो वही है, नीर के अगर पिए तो एक ही बात होगी। ऐसे अपने अपने संप्रदाय में अपने अपने इष्ट को उपासना करते हुए उसी तत्व को प्राप्त हो जाएंगे, पक्षपात न करके समता रखते हुए उसमें तत्परता से लग जाओ तो एक ही बात हो जाएगी, इसमें कोई किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। इस वास्ते भगवान ने ये आप कहते हैं श्लोक आत्मोपमेद सर्वत्र समं पश्यति, अब सभी सर्व सम देखता है तो उपासना में विषमता क्यों देखे, हमारे प्रभु को ही अल्लाह और खुदा कहते हैं, ये सीताराम सीताराम बोलते हैं, राधेश्याम राधेश्याम बोलते हैं, वो अपनी सभा में बोलते हैं। तो एक बात बताओ, कुत्ता होता है कुत्ता, उसको भी मारने जाओ तो वो चिल्लाता है, वो जानता नहीं है, परंतु एक बात है उसकी मेरी रक्षा हो जाए, तो रक्षा करने वाले भगवान कहते मेरे को पुकार पाई, तो चिल्लाने पर जितनी लाठी जोर से लगानी चाहिए उतनी ना लगेगी, वो भी भगवान को ही पुकारता है, क्या मेरी रक्षा हो जाए, तो रक्षा तो भगवान विष्णु ही है, उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी, रक्षा करने वाले भगवान विष्णु, श्रृंगार करने वाले शिव जी, तो वो उसको पुकारता है, तो हृदय में भाव है वो परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए, वो ये रहे किसी योग में चले आप, परंतु आत्मोपमेद सर्वत्र सुखमय दुख सब सुख दुख समान समझे, सब जगह ही ये छोटा है बड़ा है ऐसा नहीं, विद्या बने संबने ब्राह्मण है गौरी हस्तिनी सुनि सभा के पंडित समदर्शी न सब क्या है, ये है तेज तस् सर्वो ये शांग साम्य स्थितम माना, ये शांग माना साम्य स्थितम यही सर्ग जीते, ये जीवित अवस्थाया में अभी इस अवस्था में ही संसार को जीत गए, क्योंकि निर्दोष विद्यमान ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, जिसके अंतर्गत में निर्दोषता है और समता है तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। आप किसी चीज से ले आओ अंत में टोटल एक आना चाहिए, कोई हिसाब किया जाए तो टोटल एक आ जाएगा, इस तरह से टोटल है समता, तो आत्मोपमेद सर्वत्र समं पश्यति, सबको देखता है सब रूप से परम निर्दोष विस्तम ब्रह्म, तो यही तेजता सर्व ये साम्य स्थित मना निर्दोष विस्तम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म देश था वो क्षमता है, वो तो पुण्य से देंगे, निर्दोष है, सब है, परमात्मा है, वो परमात्मा एक है, अवतार अनेक है, भगवान के नाम अनेक है, उपासना विधियां अनेक है, परंतु पाद तत्व परमात्मा एक है। तो उसको कैसे प्राप्त है, परम योगी बताया सर्वत्र सुकुमाय खूब सहयोगी परम मतलब भगवान के मेरे में योगी श्रेष्ठ माना। ये भगवान ने छठा अध्याय के अंत में कहा, योगी नाम सर्वेशम मधुते अंतरात्मा श्रद्धावान भजते योम समय यूथ कुमो मत। ऐसे ही योगी नाम सर्वेशम ये बताया सहयोगी परमो मत। ऐसे बारहवें अध्याय में पूछने पर भगवान ने कहा दूसरा श्लोक आगे का, मैया वेश मनो यमाम नित्य युक्ता उपास सदियों पर युग में ते में युत मता मता समय युत तमो मता ते में युक्त तमा मता। बात वही है, वही उत्तम है, वही आत्मोपम्य सर्वत्र संप्रसिद्धि हो तुम। यही बारहवें अध्याय के अंत में है, ये तो धर्म्यामृत कदम यथोक्तम पर उपास श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते, वो श्रद्धा मेरे परायण सबसे श्रेष्ठ है, साधक भी सिद्धों से भी श्रेष्ठ है, यथोक्तम पर उपास ये समरूप है सब, ये गीता का सिद्धांत है। आत्मोपम्य इसको बताया समझा करके ठीक तरह से, कैसे हम समझे तो शरीर को उपमा देंगे, जैसे शरीर है अब और उपमा कैसी समझ में आवे ना आवे ये तो सबकी समझ में आवेगी, शरीरधारी मात्र के ही मनुष्य को कहना ही क्या है, तो मनुष्य अधिकारी होते हैं उनके लिए शुभ वायु सहयोगी परमो मत वो परमी होगी है। अब इतनी बातें कही, अब इनमें कोई शंका रहेगी वो मेरी त्रुटि रहेगी तो बताओ, वो हमें सुधार कर दे और शंका हो तो समाधान करने की चेष्टा करो भाई। आप फरमा जरूर पर मेरी महिमा ना करे, अंगों का कार्य अलग अलग है, शुद्धि अशुद्धि अलग अलग है,
क्या
शुद्धि अलग अलग है, परंतु सुख दुख में बरोबर है। तो गोविंद का है वो महाराज परिणय है, जिसमें जिसमें साथ संबंध है हमारा, वो पति एक ही पतिव्रत एक धड़ी, वो एक व्यक्ति प्रति वो भी क्षमता सर्वत्र हो जाएगी, अगर पति प्रति धर्म ठीक होगा शुद्ध क्षमता हो जाएगी, हो जाएगी अंदर में ये माँ योगा परिश्रम हो जाएगी, एक जगह क्षमता ले तो भी पर वो बात है, वो व्यवहार की बात है और पारमार्थिक बात है आत्मोपमेय सब जगह व्यवहार में। आपने प्रश्न ये किया सब व्यवहार में हम लौकिक व्यवहार करते हुए क्षमता कैसे रखे, ये आपका आशय में समझा तो भी मैंने बताया ऐसा करें सब जगह परमात्मा है और परमात्मा है और वो क्षमता है, जैसे माँ बाप ने मातृ देव भाव पितृदेव भाव आचार्य देव भाव, जैसे माता पिता की सेवा है, जैसे पत्नी के लिए पति की सेवा है, ऐसे स्वामी जैसे दास के लिए स्वामी की सेवा है, जैसे प्रजा के लिए अपने राजा की सेवा है, ये सब ठीक है, वो अपने अपने सेवा करते हुए वह भी क्षमता पहुंच जाएगा, एक निष्ठ हो जाएगा वह तो क्षमता प्राप्त हो जाएगा, अंतिम क्षमता एक आ जाएगी, तो पतिव्रत एक धड़ी पतिव्रत है वो, तो व्रत की क्षमता एक व्रत है, वो व्रत हमारा समय है, वो व्रत जरूरत नहीं होगा, वो चलेगा नहीं। रावण ने जानकी जी को बहुत त्रास दी तो मंदोदरी ने कहा कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप, वो कहता कि मैं सब दुनिया को विजय कर दू, सब दुनिया को हरा दू, मेरे सामने देवता धनो कोई ठीक नहीं सकता। मंदोदरी ने कहा आप सब पर विजय कर सकते हैं पर प्रतिव्रता के शरीर मन पर विजय नहीं कर सकते, ये विजय नहीं होगी आपकी, वो आपकी क्षमता नहीं है, चाहे देवताओं पर करो इंद्र पर करो किशोर कर लो वहां नहीं सुनेगी आपकी, वो उनका व्रत है, वो व्रत कैसे हो तो जैसे वो धनुष को थोड़ा है ना राम जी ने वहां आया है पद आया है पतिव्रत जैसे निकलते थे दिगैन शंभु सरासन कैसे हैं काम वचन सती मन जैसे कैसे तो वो दिखता नहीं हो सकता है वो बने क्षमता के पालन का फल हो जाएगा, ये सब परमात्मा प्राप्त है सब वो सांख्य प्राप्त सब योग ही है, योग में आ जाएगा कर्म योग के विषय में ये आ जाएगा, कर्तव्य के विषय में होते होते क्षमता आ जाएगी, भक्ति करते करते क्षमता आ जाएगी, योग करते भी क्षमता आ जाएगी, हठ योग लय योग में भी क्षमता आ जाएगी। और फरमाओ इसमें इसमें गलती हुई वो बताओ, वो शंका हुई बताओ। ऐसे नहीं ऐसे ठीक है, मैं अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं बताओ तो मेरे को लाभ होगा उसने मेरे